મહાબંધ પુસ્તક પાંચમી લેક્ચર નંબર છ. ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેય, ઓમ નમઃ સિદ્ધેય. ॐ शुद्धात्मने नमः. नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूनम्. ઉત બલિ પ્રણીતં તમ બંધ તત્વ પ્રકાશકં મહાધવલ વિખ્યાતં મહાબંધમ નમામ્યહમ. આચાર્ય શ્રી બુદ્ધબલિ ભટ્ટારક પ્રણીત એહ મહાબંધ નામ કા સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર હૈ જો ષટખંડાગમ કા છ નંબર કા ખંડ હૈ. ઇસમેં તૃતીય અનુભાગ બંધ અધિકાર કો દેખતે હુએ अभी हम पांचवें पुस्तक में पृष्ठ संख्या 22 पर आ गए, 22. यहां तो सन्निकर्ष की प्ररूपणा है, उसमें स्वस्थान सन्निकर्ष की बात हम देख रहे हैं और वो भी उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला जीव. स्वस्थान यानी उसी मूल प्रकृति के जो अन्य उत्तर प्रकृतियां है उनमें से किस किस का बंध करता है, यदि करता है तो कैसा करता है, उत्कृष्ट के अनुत्कृष्ट, और यदि अनुत्कृष्ट हो तो कितना हीन करता है, इसकी बात अपनी चल रही है. और अभी हम मार्गणाओं में देख रहे थे. देखो स्त्रीवेदी जीवों की बात हमने कल पढ़ी थी. निकालो पेज नंबर 21. देखो नरक गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, यानी वो सर्वसंक्लिष्ट वाला है, तो वहां जो प्रशस्त प्रकृतियां बंधेगी उसके साथ नियम से जो बनती है, पंचेंद्रिय जाती है, वैकृत शरीर अंगोपांग तेजस शरीर वगैरह वगैरह, अगुर लघु त्रिक और त्रस चतुष्क, ये सब कैसे बंधेगी, अनंत गुणाहीन बंधेगी. और जो अप्रशस्त है वो कैसे बंधेगी, नियम से बंधने वाली, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी. उसके बाद तिर्यंच गति का उत्कृष्ट, स्त्रीवेदी जीव है और तिर्यंच गति का उत्कृष्ट कर रहा है, तो ये तो तीनों गति के जीव लेना है. तिर्यंच गति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव, हाँ देवी होगी, देवी ही होगी अकेली, तो एकेंद्रीय जाति का बंध होगा वहां पर. और उसके साथ बनने वाले जो अप्रशस्त है वो नियम से बंधेगी, उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी होगी, और अनुत्कृष्ट स्वस्थान पतित. और वहां बंधने वाली औदारिक शरीर वगैरह प्रशस्त प्रकृतियां है वो तो अनंत गुणाहीन बंधेगी. तीन जाति के यानी जैसे तीन जाति की मुख्य जाति द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति, वो तो हाँ मनुष्य नहीं तिर्यंच नहीं उसको बांधते हैं, उसके साथ सन्निकर्ष लगाना है. तो उसके साथ जो सन्निकर्ष वहां तो अप्रशस्त भी और प्रशस्त भी अनंत गुणाहीन बन देगी. केवल द्विंद्रिय के साथ असंभ्राप त्रिपाठी का सहनन का उत्कृष्ट हो सकता है. अब बाकी तो ओके समान बताए. इतनी विशेषता है कि असंप्राप्त सुपाटिका सहनन के उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव, अब ये जो प्रशस्त अप्रशस्त बांधता है तो कैसा होगा, तो अनंत गुणाहीन होगा. एक बात, द्विंद्रिय जाति का कदाचित बंद करेगा. क्यों कदाचित, क्योंकि मनुष्य तिर्यंच करेंगे, देवी है वो असंप्राप्ता के उत्कृष्ट के साथ पंचेंद्रिय जाति का बंद करेंगे, इसलिए कदाचित में रखा. नहीं समझे? और जो पंचेंद्रिय जाति यदि बनती है तो अनंत गुणाहीन बंधेगी. ये तो हमने कल पढ़ा था ये सारा हा? अभी हमको ये देखना है ना असंप्राप्त त्रिपाठी का सहन का उत्कृष्ट देविया नहीं करेगी, वो भी 18 कोड़ा कोड़ी का करेंगे, मनुष्य तीरंज भी 18 कोड़ा कोड़ी का करेंगे, परंतु मनुष्य तीरंज द्विंद्रिय पर्याप्त के साथ बंद करेंगे और देवी है वो पंचेंद्रिय पर्याप्त के साथ बंदेगी, उन उसका उत्कृष्ट होगा असंप्राप्त त्रिपाठी का, क्योंकि उसके साथ लगाना है ना यहाँ पर, क्योंकि ओग में जब देखना है तो ओग में असंप्राप्त त्रिपाठी का तो उत्कृष्ट तो नारकी भी करते हैं, देव भी करते हैं, ऊपर के देव, तो यहाँ तो हमारी कंडीशन कौन सी है, स्त्री वेदी वाली है, तो देवी करेंगे पंचेंद्रिय जाति के साथ, मनुष्य तीरंज करेंगे द्विंद्रिय पर्याप्त के साथ, इसलिए पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को यहाँ कदाचित में रखा था। ये तो बात अपनी कल हुई थी, तीनों गति के, इसलिए द्विंद्रिय जाति का कदाचित बंध है और पंचेंद्रिय का भी कदाचित बंध देखा, दूसवर का भी कदाचित कहा, क्योंकि द्विंद्रिय अगर बनती है तो अपर्याप्त बनती है, वह उसके साथ दूसवर नहीं बंधेगा, और दूसवर बनता है हाँ ना, पर यहाँ तो वही बंधेगा ना, हाँ देवियों के लिए वही बंधेगा दूसवर, पंचेंद्रिय के साथ पर्याप्त और दूसवर का बंध हो जाएगा उनका, हाँ वो कैसा बंधेगा, अनंत गुणाहीन, क्योंकि मनुष्य तीर्यंच वो तो दूसवर का बंध नरक गति के साथ उत्कृष्ट बांधते थे, उसका अपना उत्कृष्ट वहां था, यहाँ वो अनंत गुणाहीन होगा। आतप और उद्योत का भंग सामान्य देवों के समान है, आतप यानी वो जो एक इंद्रिय का बंध कर रहे हैं देविया, उसके साथ आतप उत्कृष्ट, आतप का उत्कृष्ट चाहिए उनको, एक इंद्रिय का उत्कृष्ट था परंतु आतप का उत्कृष्ट कब होगा, हाँ तत्प्रायोग विशुद्धि में बनेगा। उद्योत के लिए भी ऐसा ही है ना, वहां तीर्यंज गति का भी अनंत गुणाहीन बनेगा और प्रशस्त भी अनंत गुणाहीन बनेगा, वो भी तत्प्रायोग में ही लेना है। अब यहां देखेंगे चार संस्थान चार सहनन मिला, दूसरा नया पैराग्राफ वही स्त्री वेदी की बात चल रही है, अप्रशस्त विहाय गति और दूसवर का भंग ओघ के समान है, चार संस्थान और सहनन तो हमने देखा था तत्प्रायोग वाले के होता है, परंतु अप्रशस्त विहाय गति और दूसवर का जो उत्कृष्ट भंग है मनुष्य और तीर्यंच करेंगे नरक गति के साथ। तो उसके साथ नरक गति का बंध होगा और उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी होगा, इस तरह से हमको देखना है। अब सूक्ष्म प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अब यह मनुष्य तीरंज है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध कर रहे एक इंद्रिय के साथ, वो जीव तीरंज गति एक इंद्रिय जाति औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मन शरीर कुंड संस्थान प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, देखो ये एक इंद्रिय जाति भी कैसे बंधेगी यहाँ पर, हाँ अनंत गुणाहीन बंधेगी, क्योंकि देवियां उसका उत्कृष्ट बंध करेंगी, और यहाँ वो क्योंकि मनुष्य तीरियां जो अति संकलेश में नरक गति बांध रहे, उससे कम संकलेश में एक इंद्रिय जाति अपर्याप्त का बंध कर रहे, सूक्ष्म का तो उत्कृष्ट हो रहा है पर एक इंद्रिय जाति का अनंत गुणाहीन होगा, ऐसे तीर्यंच गति का भी, क्योंकि तीर्यंच गति का भी उत्कृष्ट कौन करेंगे, देविया करेंगे, हाँ औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मन शरीर अभी औदारिक का कौन करेगी, देवी समय दृष्टि करेगी, तेजस कर्मण का हाँ, परंतु तेजस कर्मण तो स्त्री वेदी है तो क्षपक के होगा, आठवें गुणस्तर में उत्कृष्ट होगा, यहाँ वो तो अनंत गुणाहीन होगा। कुंड संस्थान भी नरक गति के साथ उत्कृष्ट होगा, यहाँ वो अनंत गुणाहीन होगा। ये सबको लगाना, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात, क्योंकि सूक्ष्म के साथ परघात उच्छ्वास उसके उत्कृष्ट के साथ नहीं बंधेगी, इसलिए केवल अगुरु लघु लिया, फिर उपघात स्थावर अस्थिर आदि पांच, और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग को लिए हुए होता है। आप कहेंगे सूक्ष्म के साथ अपर्याप्त और साधारण भी तो बंधेगी, हाँ पर वो उत्कृष्ट बन सकती है, इसलिए ये जो बाकी लिए वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। अपर्याप्त और साधारण का नियम से बंद करता है, नियम से लिया, ऊपर की भी नियम से होती थी परंतु अनंत गुणाहीन थी, अब ये नियम से है किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग बंद भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग भी बंद भी करता है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। जैसा हमने सूक्ष्म के साथ देखा वैसा ही इसी प्रकार अपर्याप्त और साधारण की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्त्री वेदी की मार्गणा यहां तक कंप्लीट हो गई। अब कहते हैं पुरुष वेदी जीवों में ओघ के समान भंग है, क्योंकि स्त्री वेदी में क्या डिफरेंस था, वो असंप्राप्त सर्पाटिका वगैरह थे, एकेंद्री का जो उत्कृष्ट वगैरह था, तो यहाँ पुरुष वेदी जीवों में ओघ के समान भंग है, यानी यहाँ दोनों ही ऑप्शन है। जैसे पुरुष वेदी में नरगति का उत्कृष्ट करने वाले तो जैसे ओघ में बताया वैसा ही था, अब तिर्यंच गति का उत्कृष्ट करने वालों में देवी में क्या लिया था, अकेला एकेंद्रीय जाति को लिया था, यहाँ एकेंद्रीय भी और पंचेंद्रीय भी, क्योंकि नीचे की भी पुरुष वेदी है ना, इसलिए उसमें दोनों ऑप्शन हो गए जो ओघ में देखा था। इसलिए स्त्री वेदी के समान नहीं कहते हुए ओघ के समान कह दिया उन्होंने। देखो जरा श्रीवेदी की बात निकालो 21 पेज पर, श्रीवेदी में नरक गति के उत्कृष्ट के लिए क्या कहा था, ओघ के समान, यहाँ पुरुष वेदी में भी ओघ के समान हो ही जाता है, परंतु अभी देखो तिर्यंज गति का, श्रीवेदी में तिर्यंज गति के उत्कृष्ट के लिए वो एकेंद्रीय जाति का नियम से बंध करता है लिखा था, अब पुरुष वेदी में क्या कहेंगे, तिर्यंज गति का उत्कृष्ट कर रहा है तो एकेंद्री जाति भी बन सकती, पंचेंद्री जाति भी बन सकती है, क्यों, नीचे के देव है पीतलेशा वाले वो एकेंद्री जाति के साथ उत्कृष्ट करेंगे और ऊपर के देव पंचेंद्री जाति के साथ करेंगे। पंचेंद्री का उत्कृष्ट नहीं चल रहा है, तिर्यंज गति का उत्कृष्ट चल रहा है, और पंचेंद्री जाति का उत्कृष्ट बंध तो पुरुष वेदी क्षपक करेंगे, तीन गति के नहीं करेंगे। इसलिए वो श्रीवेदी के समान नहीं कहते हुए ओघ के समान कह दिया उन्होंने, और बाकी तो शेष प्रकृतियों का ओघ के समान बता ही दिया था। श्रीवेदी में असंप्राप्त सुपाटी का सहनन के लिए क्या देखा था हमने, हाँ जो असंप्राप्त सुपाटी का सहनन का उत्कृष्ट बंध, द्विंद्रिय जाति का तो मनुष्य तिर्यंज ही करेंगे, पंचेंद्रिय जाति देव भी करेंगे। अब यहाँ तो हमको पुरुष वेदी को लेना है, तो जैसे ओघ में बताया वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते, पुरुष वेदी की बात हमने देख ली। अब नपुसक वेदी जीवों में सात कर्मों का भंग ओघ के समान है। अब जो नाम कर्म की बात अलग से बताते हैं, श्रीवेदी में भी सात कर्मों का भंग ओघ के समान बताया था, पुरुष वेदी में तो आठों ही कर्मों का बताया था, यहाँ सात कर्मों का भंग तो ओघ के समान है। अब नरक गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाले जीव के पंचेंद्रिय जाति आदि सब प्रकृतियों का भंग ऊह के समान है। यानी यहाँ जो प्रशस्त बनती है वह अनंत गुणाहीन बंदेगी। वह यानी वह जीव कुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क नरक गत्यानुपूर्वी उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थि आदि छह लिया उसमें दूसर भी ले लेना, वो नियम से बंद करता है क्योंकि नरक गति के साथ ये नियम से बंधने वाली प्रकृतियां है, ये अप्रशस्त है। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग बंद भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद भी करता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। इसी प्रकार नरक गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। नरक गति के साथ केवल नरक गत्यानुपूर्वी को ही लिया। अब श्रीवेदी में क्या लिया था, उसके तहत तो सभी लिए होंगे। इसी प्रकार नरक गत्यानुपूर्वी भी लिया था, अप्रशस्त विहाय गति भी लिया था, दूसर भी लिया था, क्योंकि स्त्री वेदी में देवी है वो एक इंद्रिय के साथ उसका बंध नहीं करते हैं और मनुष्य तीरंज है वो नरक गति के साथ ही इसका बंध करते हैं, इसलिए उनका आपस में। अब यहाँ क्या है, नारकी भी आ गए यहाँ बांधने वाले, तो इसलिए बाकी को वो तो तीरंज गति के साथ भी उत्कृष्ट करेंगे अप्रशस्त विहाय गति और दूसर का, इसलिए नरक गति के समान उसको ऐसा नहीं कह सकते हम। इसलिए यहाँ केवल नपुसक वेदी के लिए केवल नरक गत्यानुपूर्वी का सन्निकर्ष नरक गति के समान बता दिया। अब 23 पेज पर आते हैं। तीर्यंच गति के उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव, अब ये नारकी को ही लेना है क्योंकि ओग में हम तीर्यंच गति का उत्कृष्ट देव और नारकी देखते हैं। अब यहाँ हमारी कंडीशन नपुसक वेदी की है इसलिए देवों को यहाँ कोई सवाल ही नहीं होने का। और मनुष्य तीर्यंच है वो तीर्यंच गति का उत्कृष्ट नहीं करेंगे, तो वो बंद करने वाला जीव पंचेंद्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है। पंचेंद्रिय जाति आदि का नपुसक वेदी में शपक को उत्कृष्ट होगा, यहाँ वो अनंत गुणाहीन होगा। इन्हें पंचेंद्रिय जाति है, औदारिक शरीर अंगोपांग तेजस शरीर वगैरह सब, ये सभी प्रशस्त लेना है, अग्रु लघु त्रिक वगैरह वगैरह। हुंड संस्थान, अब तीरंज गति के साथ ये उत्कृष्ट के साथ ये जो अति अप्रशस्त है वो बंधेगी, तो हुंड संस्थान असंप्राप्ता सुरपाटिका सहन अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तीरंज गत्यानुपूर्वी उपघात अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। इसी प्रकार असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन और तीरंच गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। नरक गति के साथ नरक गत्यानुपूर्वी अकेला लिया था, तीर्यंच गति के साथ तीर्यंच गत्यानुपूरी तो लेना ही लेना, पर सहनन तो नरक गति के साथ नहीं बनता था, तो यहाँ सहनन को भी यहीं पर कह देना, उसका भी सन्निकर्ष ऐसा ही होगा। परंतु देखो कुंडक संस्थान है, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क है, उपघात है, अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर वगैरह जो है वो तो नरक गति के साथ भी उत्कृष्ट बनती थी, यहाँ पर भी उत्कृष्ट, तो उसका सन्निकर्ष देखते समय हमको नरक गति या तीर्यंच गति ऐसा कहना पड़ेगा। परंतु तीरंज गति के साथ ऐसा ही सन्निकर्ष केवल असंप्राप्त सुपाटिका सहनन और तीरंज गत्यानुपूर्वी की बात होगी। फिर से ऊपर ले लिए ना अप्रशस्त विहाय गति, मैं नहीं समझा आपका प्रश्न क्या था। लेते ही है ना, हाँ देव करेंगे या ओग में उसके साथ ऑप्शनल था, हाँ क्योंकि स्वामी नारकी है वो तीरंज गति पंचेंद्रिय जाति के सहित बांधेंगे। हाँ ये हो गया। अब एकेंद्रीय जाति के, यहाँ मनुष्य गति और देवगति छोड़ दी क्योंकि वो के समान बता देंगे। अब एकेंद्रीय जाति के, अब नपुंसक वेद में एकेंद्रीय जाति बांधने वाले मनुष्य और तीर्यन चाहिए, और वो कौन सा बंध करेंगे लक्ष्मी? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वाला, क्योंकि उनके अति संकलेश में वही बंधेगी। अति यानी एकेंद्रीय के योग्य संकलेश। देखो एकेंद्रीय जाति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव, जब ओग में देखते थे तो देवों को लेना पड़ता था, यह नपुसक वेद में अभी नार के तो बांधते नहीं, मनुष्य तीर्यंच को ही लेना है। और मनुष्य तीर्यंच एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट करते हैं तो वहां सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बनती है, तो वह जीव स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण का नियम से बंध करता है, किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंध करता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है, और इन सब का भी आपस में ऐसा ही सन्निकर्ष होगा। शेष प्रकृतियों का नियम से बंध करता है, क्योंकि एकेंद्रीय जाति बंध रही है तो तीर्यंच गति भी बंध रही है वहां पर, और फिर औदारिक शरीर भी बंध रहा है, तेजस कारवाण भी है, अन्य सभी जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं वो भी शेष प्रकृतियों का नियम से बंध करता है, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है। ये समझ में आई ना बात? यहाँ जो बंधने वाली प्रकृतियां अन्य प्रकृतियां वो कैसे बंधेगी? तो अनंत गुणे हीन। इसी प्रकार एकेंद्रीय जाति के समान स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इन सबका स्वामी वही जीव है, तो जहाँ एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट है वहां स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण का भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो सकता है, उसमें से एक एक को ले ले तो वैसा ही उसमें सन्निकर्ष लगेगा। शेष भंग ओग के समान है, शेष भंग कह दिया तो उसमें मनुष्य गति आ गई है, देव गति आ गई है, द्विंद्रियादि जाति आ गए, पंचेंद्रिय जाति वगैरह, वो सब बाकी पूरा भंग ओग के समान घटित हो जाता है, क्योंकि उसके स्वामी ओग के समान बन जाते हैं। अब ये तीनों वेद वाले हुए, अभी अपगत वेदी जीवों में। अपगत वेदी जीव कहने से वेद का उदय मिट गया है, नवे गुणस्थान के दूसरे भाग से ऊपर, उनमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरण के, यानी ज्ञानावरण का एक भेद लिया, उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव चार ज्ञानावरण का नियम से बंध करता है। अभी यहाँ क्या विशेषता देखो, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग को लिए हुए होता है, यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? ये अपगत वेदी कौन सा गुणस्थान है? हाँ, तो नवे गुणस्थान में परिणाम समान, बंध समान, इसलिए उसका उत्कृष्ट बंध कब होता है? उतरने वाला अंतिम समय में, अपगत वेद के अंतिम समय में। सबके परिणाम समान होते हैं, परिणाम समान क्या, उसका बंध भी समान होगा, इसलिए अनुभाग समान है, परिणाम एक है। इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पांच अंतराय की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि सबका उत्कृष्ट लेना है ना, भले बंध विच्युति अलग अलग पॉइंट पर क्यों ना हो, परंतु ये तो उतरने वाले के अंतिम समय में वहां उत्कृष्ट अनुभाग का बंध होता है, और वहां एक का उत्कृष्ट है तो अन्य का नियम से उत्कृष्ट होगा। चार संज्वलन में क्रोध का उत्कृष्ट है तो चारों का उत्कृष्ट होगा, अन्य तीनों का। यह सभी बंध रही है, चारों बंध रही है, जगन्य की बात अलग है, यह हम उत्कृष्ट की बात करें, क्योंकि अपगत वेद का उतरने वाले का अंतिम समय वहां चारों संज्वलन का बंध है और वो समान बंध है। ये हो गया अपगत वेदी। अब क्रोधादि चार कषाय वाले, ये कषाय मार्गणा की अपेक्षा की बात है, क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में ओघ के समान भंग है। ये तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से अपने अपने बंधे विच्छेदी तक यहाँ लेना है उसको, तो के समान उसका भी सब कथन घटित हो जाता है। अब ज्ञान मार्गना, मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जीवों में ये ज्ञान मार्गना की अपेक्षा मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, विभंग ज्ञानी का है और सम्यक मार्गना की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि का है। इन जीवों में औदारिक शरीर के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव, देखो वो में औदारिक का उत्कृष्ट अनुभाग तो समय दृष्टि देवनार के करते, यहाँ ये सारे कैसे जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव है। तो औदारिक शरीर के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव तिर्यंज गति और तिर्यंज गत्यानुपूर्वी का कदाचित बंध करता है। अब ये सम्यक तो मिथ्या दृष्टि है ना, यहाँ अभव्य को तो नहीं लिया है पर औदारिक शरीर का बंध कर रहा है, तो देव नारकी सम्यक तो के सन्मुख वाले करेंगे पर सातवें नरक का नारकी तो तिर्यंज गति भी बंधेगा, तो तिर्यंज गति भी ऑप्शनल में ले रखना है। तो तिर्यंज गति और तिर्यंज गत्यानुपूर्वी का कदाचित बंध करता है, अभी यहाँ तो विशुद्धि है ना मैक्सिमम, तो उसका तो यहाँ जगन्य हो रहा है, परंतु उसके उत्कृष्ट की अपेक्षा उसको क्या कहेंगे, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है। ये समझ में आई बात, औदारिक शरीर प्रशस्त है उसका उत्कृष्ट सम्यक के सन्मुख वाले को होता है और वहां पर तिर्यंच गति का क्या होगा, अनंत गुणा हीन होगा। मनुष्य गति द्विक और उद्योत का कदाचित बंद करता है। अब उद्योत वहां सातवें नरक का नार की उद्योत अगर बांधता है तो कैसा होगा उसको, वो उत्कृष्ट होगा उसके लिए। और जो मनुष्य गति बांधते कौन, अन्य देवनार के लिए, तो वो भी कैसे बंधेंगे, सम्मिथ्यात्व के लिए वो कैसा होगा, क्योंकि करण लब्धि का अंतिम समय है, वो भी उत्कृष्ट होगा। इसलिए उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी कहेंगे। किसके साथ बात हो रही है, औदारिक शरीर के साथ। मनुष्य गति द्विक और उद्योत का कदाचित बंध करता है, कदाचित क्यों कहा, अन्य नारकी और देव सम्यक के सन्मुख में मनुष्य गति को बांधेंगे और सातवें नरक का नारकी तिर्यंज गति गत्यानुपूर्वी और उद्योत को बांधेंगे, इसलिए कदाचित बंद करता है। और यदि बंद करता है तो उत्कृष्ट अनुभाग बंद भी होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद भी होता है। यानी तिर्यंज गति है वो अनंत गुणाहीन बनती है, बाकी मनुष्य गति द्विक और उद्योत होगी तो उत्कृष्ट बंधेगी। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों लिए, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद होता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। अब उसी औदारिक शरीर के साथ पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुर संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और निर्माण का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है। देखो देखो ये कौन सा औदारिक शरीर का बंद कर रहा है, सम्यक के सन्मुख, और पंचेंद्रिय जाति का संयम के सन्मुख है तो मिथ्या दृष्टि है। तो जो चौथे में जाने वाले हैं वो औदारिक शरीर बांध रहे हैं, परंतु ये संयम के सन्मुख वैकिरिक शरीर को बांधेंगे और वहां पंचेंद्रिय जाति उसकी अनंत गुणे अधिक होगी, और यहाँ वो कैसे होगी, अनंत गुणाहीन होगी। यानी इन सबका उत्कृष्ट संयम के सन्मुख होगा, ख्याल में आई ना बात, है तो सभी मिथ्या दृष्टि है पर औदारिक शरीर के लिए चौथे में जाने वाले देवनार के लिए थे, और इन सबको मनुष्य में लेना है संयम के सन्मुख वाले को, तो नियम से बनती और अनंत गुणाहीन अनुभाग को लिए हुए बनती है। औदारिक अंगोपांग
और वज्र ऋषभ नाराज सहन का नियम से बंद करता है, क्योंकि वही करण लब्धि का अंतिम है, देवनार की है उसको बांधने वाला, औदारिक शरीर के साथ सन्निकर्ष लिया है ना, इसलिए नियम से लिया। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग बंद भी करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद भी करता है, और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है तो वह छह स्थान पति थाने को लिए हुए होता है। देखो ये बात ख्याल में आई आपको, क्योंकि यहाँ पर भी करण परिणाम है और वो भी चौथे में अनिवृत्ति करण है, परंतु उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों का भेद है, परंतु जो श्रेणी वाले है वहां पर समान लिए थे। इसी प्रकार जैसे औदारिक शरीर का देखा हमने सन्निकर्ष, ऐसा ही औदारिक अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहनन की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि इसमें भी तिर्यंज गति का ऑप्शन बताया था, इसलिए इसके समान मनुष्य गति का नहीं कहा। यहाँ पर वो उसका अनुभाग में डिफरेंस पड़ता होगा, वही इसीलिए तो लिया है ना, श्रेणी में बात अलग है, यहाँ की बात अलग है, यहाँ उसमें डिफरेंस पड़ता है, उसका अर्थ ही होता है यहाँ उसके, इससे ही वो सिद्ध हो जाता है। अनिवृत्तिकरण के लिए उसके परिणाम जो सम्यक्त्व के सन्मुख वाले के परिणाम उसकी अपेक्षा समान है, परंतु अनुभाग में इतना डिफरेंस तो पड़ ही रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ मनुष्य गति को इसी समान नहीं लिया, क्योंकि औदारिक शरीर के साथ तिर्यंज गति मनुष्य गति का ऑप्शन रखा था। शेष प्रकृतियों का भंग ओघ के समान है, किंतु आहारग्विक और तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ कहना चाहिए, क्योंकि आहारग्विक तो बनती है सातवें आठवें में, ये सारे मिथ्या दृष्टि जीव है, तीर्थंकर प्रकृति भी सम्य दृष्टि को बनती है। इतनी विशेषता है कि देवगति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव यश कीर्ति का नियम से बंद करता है, किंतु उसका उत्कृष्ट बंद भी करता है और अनुत्कृष्ट बंद भी करता है। लक्ष्मी कहने की क्या जरूरत थी, देवगति का उत्कृष्ट कौन करेगा, संयम के सन्मुख, और यश कीर्ति का नियम से करता है और उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों करता है। हाँ, ओघ में क्या है, आठवें गुणस्थानवर्ती देवगति का उत्कृष्ट और यश कीर्ति का तो दसवें में उत्कृष्ट, वहां वो अनंत गुणाहीन था, पर यहाँ वो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों होगा। यदि अनुत्कृष्ट बंद करता है तो वह छह स्थान पति थाने को लिए हुए होता है। इसी प्रकार सब प्रशस्त प्रकृतियों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। तो ये हो गई मार्गणा मत्य ज्ञानियों की। आभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का सन्निकर्ष अनुदिश के समान है, क्योंकि वो भी सम्य दृष्टि है और ये भी सम्य दृष्टि, वो तो चौथे ही गुणस्थान वाले, परंतु सात कर्मों में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो उत्कृष्ट बंध होगा मोहनीय का वो भी चौथे गुणस्थान वाले को होगा। स्वामी उसको मिथ्यात्व के सन्मुख कहेंगे, परंतु कथन तो वैसा ही होगा, सन्निकर्ष में कथन में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी चौथे गुणस्थान में बंधने वाली जो है वहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बनती नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उत्कृष्ट करने वाला तो वहां कहेंगे अन्य ग्यारह का नियम से बंध होता है ना, और फिर भय जुगुप्सा भी ध्रुवबंदी है, और फिर वहां तो अरति शोक लेना और पुरुष वेद लेना है, क्योंकि वो तो अभी बाकी तो बंध विच्छित हुई है। यानी सबका आपस में वैसा ही होगा मोहनीय में, केवल हास्य का उत्कृष्ट करने वाले के लिए इन सब का कैसा होगा, अनंत गुणाहीन होगा, बारह कषाय का, अरति शोक का, भय जुगुप्सा का। अप्रशस्त वर्ण के अब नाम कर्म की बात बता रहे, अप्रशस्त वर्ण के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अप्रशस्त है अप्रशस्त प्रकृति है ध्रुवबंदी है, मिथ्यात्व के सन्मुख उसका उत्कृष्ट होगा, परंतु मिथ्यात्व के सन्मुख तो चारों गति के जीव हो सकते हैं। तो जो सम्यक दृष्टि है तो देवनार की मनुष्य गति बांध रहे, मनुष्य तिरिंज देवगति बांध रहे, इसलिए ऑप्शन में मनुष्य गति देवगति। औदारिक शरीर वैकिरिक शरीर, औदारिक अंगोपांग वैकिरिक अंगोपांग, वज्रषभ नाराज सहनन, दो अनुपुरी और तीर्थंकर का कदाचित बनकर, ये सब ऑप्शनल में लिए, क्योंकि कौन सा बांध रहा है क्या उसके अनुसार, तो कदाचित बंद होता है। और जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं, और समय दृष्टि के ऊपर के गुण स्थानों में जहां जो बनती है, मनुष्य गति तो चौथे में ही बनती है, परंतु सर्व विशुद्धि वाले को उत्कृष्ट बंधेगी, और यहाँ वो कैसे बंधेगी, जो मनुष्य गति पंचक है उसमें से, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रषभ नाराज सहनन, वो कैसे बंधेगी यहाँ पर, अनंत गुणाहीन बंधेगी। सबके लिए समझ लेना। अब पंचेंद्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंध करता है, जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है, क्योंकि इनका उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञानी में क्षपक को होगा। किसके साथ बात हो रही है, अप्रशस्त वर्ण की बात है, उसके साथ यहाँ पंचेंद्रिय जाति आदि नियम से बंधने वाली, जो क्योंकि समय दृष्टि है, तो सुभग सुस्वर आदेय वगैरह बंधेगी, और फिर अगुर लघु त्रिक बंधेगा, ये सब ले लेना उसके। तो अनंत गुणाहीन बंधेगी। अप्रशस्त गंध आदि तीन, क्योंकि वर्ण के साथ हम सन्निकर्ष लगा रहे, तो वो तो नियम से बंधेगी। उपघात अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति का नियम से बंद करता है, क्योंकि ये ऑप्शनल थी ना स्थिर अस्थिर, पर यहाँ सर्व संकलेश में अस्थिर अशुभ और अयश का नियम से बंद होगा, किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। इसी प्रकार इन प्रकृतियों का परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इन प्रकृतियों का ने ये अप्रशस्त वर्ण चतुष्कह उपघात अस्थिर अश्वर अयश, ये जो अप्रशस्त प्रकृति है उसके बारे में ये बात हो रही है। किंतु इनमें से किसी एक के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव इन्हीं में से शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। शेष कथन ओघ के समान है। शेष कथन ने बाकी जो प्रकृतियां छोड़ी है वो ओघ के समान है। इसी प्रकार यानी यहां बंधने वाली प्रकृतियां ले लेना है। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि उनमें तो कोई कथन में फर्क नहीं होगा सन्निकर्ष में। अब मन पर्याय का एक्स्ट्रा हो गया वहां पर, मन पर्याय ज्ञानी चाहिए जीवों में। क्षायिक प्रकृति ने क्षपक प्रकृतियों का भंग ओघ के समान है। प्रशस्त प्रकृतियां लेना, वहां उनका उत्कृष्ट होता है। जो आठवें गुणस्थान में जिनका जो बंध विच्छित्ति है ना, वो प्रशस्त वाली, तो उनके साथ वो जो यश कीर्ति है वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। बाकी आपस में उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, क्योंकि आठवां गुणस्थान है, आठवें गुणस्थान में डिफरेंस है अनुभाग के बंध में। शेष प्रकृतियों का भंग आहारक करेगा, आहारक कायोगी जीवों के समान है। शेष प्रकृति ने सब ये तो ज्ञानावरण आदि तो समझ में आती है बात, मुनि की बात लेना है उसमें। मन परे ज्ञानी का उत्कृष्ट संकलेश कब होता है? असंयम के सन्मुख होता है तब। तो वहां जो बंधने वाली ले लेना, संज्वलनचारी बनती है ना, क्योंकि मन परे ज्ञानी तो गुणस्थान उसका छठा गुणस्थान है। अभी चार संज्वलन बन रहे, पुरुष वेद बन रहे, पर जहां उसका उत्कृष्ट है तो अरति शोक को ले लेना। बहिजुगुप्सा तो द्रोहबंदी है ही। इसी प्रकार जैसे मन परे ज्ञानी में जो हमने अभी घटित किया वैसा ही, और यहाँ पर भी तो गति में तो यानी सॉरी नाम कर्म में तो देवगति बन रही है, तो देवगति के साथ हमने देखा था उसके साथ जो बनती है प्रशस्त वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी होगी, जो अप्रशस्त बनती है वो अनंत गुणाहीन बन देगी। अप्रशस्त में अप्रशस्त मन चतुष उपघात लेना। इसी प्रकार संयत सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवों के जानना चाहिए। परिहार विशुद्धि संयत जीवों में आहारक करेगा, आहारक कायोगी जीवों के समान भंग है, क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान है तो छठे गुणस्थान में जो उत्कृष्ट होता है उसकी वहां बात करेंगे, और जो प्रशस्त प्रकृति है वो तो सातवें गुणस्थान में उत्कृष्ट होगी। इतनी विशेषता है कि आहारक द्विक का भंग देवगति के समान है, यानी देवगति के समान है ने? देवगति का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाले का जो सन्निकर्ष देखा था, हाँ वो वहां पर ले लेना। यानी आहारक द्विक का उत्कृष्ट कर रहा है तो उसके साथ बंधने वाली उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी बंधेगी, क्योंकि देवगति बन रही है ना वो सारी उसके साथ, क्योंकि परिहार विशुद्धि के लिए उसी की बात है। इतनी और विशेषता है कि संयत जीवों में अप्रशस्त प्रकृतियों के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करता, क्योंकि देखो संयत जीवों में अप्रशस्त कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव मिथ्यात्व के सन्मुख वाला है, और जो संयतों में जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है वो कभी मिथ्यात्व के सन्मुख नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व के सन्मुख वही हो सकता है जिसने मिथ्यात्व में नरकायु बंद की है, वो तो चौथे से ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए वो तो अप्रशस्त का उत्कृष्ट करने वाला जो तीर्थंकर प्रकृति बांध नहीं रहा। इसी प्रकार सबके जानना चाहिए, यानी जो मन परिज्ञान वगैरह जो होता है मन परिज्ञान के साथ हो तो असंयम में तो आ सकता है, परंतु अन्यत्र संयम सामायिक संयम छेदोपस्थापना वाले वो मिथ्यात्व में कभी नहीं जाएंगे। मनुष्य संयत हाँ कैसे लेंगे? नरकायु के बंद किया वो तो मुनि नहीं हो सकता, संयमी की बात है ना, सम्य दृष्टि की नहीं है। और आहार द्विक का बंद करने वाला यानी संयमी है ना, हाँ देखो सूक्ष्म अभी संयम मार्गणा की बात हो रही ना, सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में अपगत वेदी जीवों के समान भंग है, पर अपगत वेदी में संज्वलन को लिया था, यहाँ मोनिय का तो बंध ही नहीं है, है ना, वहां चार संज्वलन को लिया था। या तो एक का उत्कृष्ट है तो अन्य का भी उत्कृष्ट होगा। अब इसमें क्या लगाना है, सन्निकर्ष में तो नाम कर्म का तो सन्निकर्ष हो नहीं सकता, क्योंकि एक यश कीर्ति का ही तो बंध है, उच्च गोत्र एक ही बंध रहे, वेदनी ऐसे भी सन्निकर्ष नहीं होता है, तो अन्य कौन से रहेंगे, पांच ज्ञानावरण चार दर्शन, हाँ तो उसमें तो सन्निकर्ष एक का उत्कृष्ट है दूसरे का भी उत्कृष्ट है। संयता संयत जीवों में परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियां जाननी चाहिए, क्योंकि यहां मोहनीय में आठ कषाय हो गए, तो एक का है तो अन्य सात का उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट ऐसा कहना पड़ेगा। यानी संयता संयतों में अप्रशस्त कर्मों का उत्कृष्ट कब होगा, मिथ्या तो के सन्मुख वाले के होगा, वहां पर भी अप्रशस्त के साथ तीर्थंकर प्रकृति नहीं लेना, इसलिए परिहार विशुद्धि के समान बता दिया उन्होंने। हाँ, अपनी अपनी प्रकृतियां जानना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी तो देवगति का ही तो बंध हो रहा है, नाम कर्म में एक देवगति ही बंध रही है, और संहिता संहितों के लिए एक का उत्कृष्ट है तो सबका उत्कृष्ट होगा, प्रशस्तों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दोनों, जैसे देवगति बन रही है तो पंचेंद्रीय जाति वगैरह तो उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का होगा। हाँ, यानी वो सारे ही लेना यहाँ पर यश कीर्ति के साथ सभी कुछ, क्योंकि मार्गना हमारी संयता संयतों की। असंयत जीवों में मत्य ज्ञानी जीवों के समान भंग है, यानी अप्रशस्त के लिए तो मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट होगा, इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाला जीव देवगति चतुष्का का नियम से बंध करता है, तो असंयम में से यानी संयम के सन्मुख वाले को वो उत्कृष्ट होगा, किंतु वो उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंध करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंध करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो नियम से छह स्थान पति थाने को लिए हुए होता है, यानी असंयतों में भी प्रशस्त प्रकृतियों का संयम के सन्मुख वाले को लेना, जैसे हमने वहां लिया था मत्य ज्ञानी में, पर मत्य ज्ञानी में तीर्थंकर प्रकृति को तो लेना ही नहीं था और यहां लेना था, इसलिए वो विशेषता बताई। ख्याल में आती बात, मत्य ज्ञानी में तो हमने देवगति को भी लिया था, पर वहां तो तीर्थंकर प्रकृति का कोई सवाल नहीं था बंधने का, यहाँ है। असंयम कहने से चौथा गुणस्थान वाला हम ले सकते हैं। वही तो बात हो रही है, संयम के सन्मुख वाले के, देवगति वगैरह का भी वही पर है। हाँ, पर देवगति का तो हमने मत्य ज्ञानी में भी देखा था संयम के सन्मुख, परंतु वहां तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन रही थी, यहाँ बन रही है क्योंकि ये चौथे गुणस्थान वाला है। और यदि बांधता है तो ये अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट बांधेगा या अनुत्कृष्ट, और अनुत्कृष्ट होगा तो छह स्थान पतित होगा। चक्षु दर्शन वाले जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान भंग है, जैसे त्रस पर्याप्त और पंचेन्द्रिय के लिए हमने देखा था कि ओ के समान भंग है, ऐसे यहाँ पर भी ले लेना, क्योंकि उसमें तो सर्वसंक्लिष्ट मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है और क्षपक की प्रकृतियां भी घटित होती है, इसलिए वैसा ही त्रस पर्याप्त के समान भंग बता दिया। त्रस को अलग क्यों लियो, देव ओ के समान क्यों नहीं कहा, हाँ। एक मिनट, पंचेंद्रिय त्रस पर्याप्त को क्या लिखा था, ओके समान भंग है यहाँ त्रस पर्याप्त, अच्छा ठीक है चक्षु दर्शन वाले इसलिए त्रस पर्याप्त कहा, तो ओग के समान में उसमें कोई डिफरेंस है तो नहीं ना। हाँ ओग के समान, क्योंकि त्रस पर्याप्त में ओग के समान बताए, क्योंकि त्रस पर्याप्त कहते हैं तो उसमें क्षपक प्रकृतियां भी आती है और पंचेंद्रिय तो सर्वसंक्लिश भी आ जाता है। अभी लेशा मार्गना चलेगी यहां से। कृष्ण लेशा वाले जीवों में सात कर्मों का भंग ओग के समान है। देखो जब कृष्ण लेशा वाले में, जब हम यहाँ की बात करेंगे सर्व संकलेश वालों की, तो नारकी भी आ गए, मनुष्य तीरंच भी आ गए। परंतु जब नील लेशा में सर्व संकलेश वाले लेते तो नारकी को ही लेना पड़ता। अब यहाँ देखते हैं, कृष्ण लेशा वाले जीवों में सात कर्मों का भंग ओग के समान है। क्योंकि मोहिनी में भी सारे अप्रशस्त है तो वो भी सब घटित हो जाता है। नरक गति दंडक, तीर्यंच गति दंडक और एकेंद्रीय जाति दंडक का भंग नपुसक वेद दंडक के समान नहीं, नपुसक वेदी के समान चाहिए। देख लेते जरा, नरक गति दंडक कहने से 22 पेज निकालो। नपुसक वेदी जीवों में हमने देखा था, अने नरक गति का उत्कृष्ट बंद करने वाला पंचेंद्रिय जाति वगैरह प्रशस्त प्रकृतियां नियम से बांधेगा, वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। कुंडक संस्थान वगैरह अप्रशस्त प्रकृतियां जो है नियम से बंधेगी, वो उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी बंधेगी। अब कहते तीर्यंच गति दंडक, ये 23 पेज पर है। हाँ तो उसमें तीर्यंच गति का उत्कृष्ट बांधने वाले नारकी है और वो भी पंचेंद्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणाहीन बनता है। और हुंड संस्थान वगैरह असंप्राप्त सरपाटी का वो उसके साथ ले लेना, इनका कैसा बंद करेगा, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी। अब एकेंद्रीय जाति का दंड, कृष्ण लेशा में एकेंद्रीय जाति बांधने वाला मनुष्य तीर्यंच ही होगा, वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वाला दंडक होगा उसका, वो दंडक लेना था हमको। तो एक का उत्कृष्ट है तो अन्य का उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी होता है, ये हमने वहां देखा था। यहाँ नपुसक वेद दंडक के समान लिखा है ना, उसके बदले नपुसक वेदी के समान करना। हाँ लास्ट टाइम किया था हमने। मनुष्य गति दंडक का भंग सामान्य नारकियों के समान है। मनुष्य गति पंचक वाली जो बात होती है उसका उत्कृष्ट कृष्ण लेशा वाला सम्य दृष्टि नारकी करेगा, क्योंकि मनुष्य सम्य दृष्टि मनुष्य गति का बंध नहीं करेगा, इसलिए सम्य दृष्टि नारकी लेना। तो मनुष्य गति का दंडक का भंग सामान्य नारकियों के समान है। मैंने मनुष्य गति का उत्कृष्ट कर रहा है, सर्व विशुद्ध चौथे गुणस्थान वाला है, तो वहां बंधने वाली जो सभी प्रकृतियां उसको उत्कृष्ट बन सकती है। खाली आपस में लगे लगाते समय मनुष्य गति पंचक को लेना है। कृष्ण लेशा में पंचेंद्रिय जाति वगैरह का उत्कृष्ट भी, संयम के कहां सवाल है, वहां मनुष्य गति कहां बनती है। चारों गति में कहां है, देव को कहां ले रहे हैं। समय दृष्टि लेना है। पंचेंद्रिय जाति नहीं, मनुष्य गति की बात चल रही है। सभी करेंगे। अरे मनुष्य चिड़िया जो भी समय दृष्टि कर सकता है ना, विशुद्धि में दिशा पलटेगी। पर हाँ सर्व विशुद्ध नहीं कह सकते उनको। उनको सर्व विशुद्ध नहीं कह सकते, तो नारके को लेना है। वो कितना भी विशुद्ध हो जाएगा तो उनकी लेशा वही रहेगी, कि नारकी समय दृष्टि है। तो पंचेंद्रीय जाति वगैरह का भी कृष्ण लेशा वाले के लिए वही उत्कृष्ट होगा। सामान्य नारकियों के समान बता दिया ना। अब देवगति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला है तो तिरंच मनुष्य होगा। वह जीव वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग और देवगत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है, किंतु उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है। अब कृष्ण लेशा में तो नारकी तो बांध ही नहीं सकते, केवल मनुष्य ही बांधते हैं। यदि बंद करता है तो उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। शेष प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का, प्रशस्त में नारकी समय दृष्टि को उत्कृष्ट होगा, तो प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंद करता है। किसके साथ? ना ना, देवगति के साथ। नहीं, देवगति के साथ क्यों लिया? तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है। किसके साथ बंद करता है? देवगति के साथ। फिर से बराबर। नेचुरली देखो क्या है, शेष प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का नियम से बंद करता है। कौन? देवगति का उत्कृष्ट करने वाला, यानी देवगति के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, यानी देवगति के साथ जो पंचेंद्रीय जाति बंधी गई। देवगति कौन बांध रहा है कृष्ण लेशा में? मनुष्य। मनुष्य तिरंज को ले लेना। परंतु ये पंचेंद्रीय जाति का कृष्ण लेशा में उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? नारकी समय दृष्टि करेगा। इसलिए कृष्ण लेशा वाले मनुष्य को वो अनंत गुणा हीन बंधेगी। देवगति का सवाल नहीं, क्योंकि देवगति तो मनुष्य ही बांधेंगे, तिरंज ही बांधेंगे। और अप्रशस्त का भी वैसे तो होता ही अनंत गुणा है। इसी प्रकार देवगति चार यानी अन्य तीन और तीर्थंकर प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी कृष्ण लेशा में जो देवगत्यानुपूर्वी बांध रहा है, वैकृत बांध रहा है, उसके लिए ऐसा ही कथन होगा। या कृष्ण लेशा में जो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बांध रहा है उसकी भी बात ऐसी होगी, यानी उसका सन्निकर्ष देवगति के समान होगा। शेष भंग ओघ के समान है। फिर से क्या कह रहे? ये हो गया कृष्ण लेशा की बातों के। अब नील और कापत लेशा वाले जीवों में सात कर्मों का भंग ओघ के समान है। ना पर नरक गति तो मनुष्य तीरंच ही बांधेंगे। तो नरक गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव नरक गत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है, किंतु वो उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित हानि को लिए हुए होता है। शेष प्रकृतियों का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणे हीन अनुभाग को लिए हुए होता है। यानी नरक गति के साथ बंधने वाली जो शेष प्रकृतियां है वो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो। हमेशा तो हम ओग में तो नरक गति के साथ तो अप्रशस्त का उत्कृष्ट देखते थे, पर अप्रशस्त प्रकृतियां नारकी तिरंज गति के साथ बांधेगा और उसका उत्कृष्ट होगा, तो यहाँ बाकी सभी प्रकृतियां कैसी बंधेगी? तो अनंत गुणाहीन बंधेगी। इसलिए यह अनंत गुणाहीन कहा। केवल नरक गति और गत्यानुपूर्वी का बंध तो मनुष्य तीरंज ही करते हैं, नारकी करते ही नहीं है। अन्य जो प्रकृतियां जो नारकी बांधते हैं उनका उत्कृष्ट उन्हीं का होगा। सम्यक दृष्टि भी जो नारकी बांधते हैं उनका उत्कृष्ट उन्हीं को होगा। जैसे नरक गति का देखा ऐसा ही इसी प्रकार नरक गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब तिर्यंच गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाले जीव ये तो नारकी ही है। उसके हुंडक संस्थान आदि का भंग सामान्य नारकियों के समान है, यानी उसके साथ बंधने वाली जो अप्रशस्त प्रकृतियां है सारी ही वो कैसे बंधेगी उसके साथ उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी और छह स्थान पतित। शेष प्रकृतियों का भंग कृष्ण लेशा के समान है, यानी तीर्यंच गति के साथ जो पंचेंद्र जाति तेजस कर्मण वगैरह बंधेगी वो भी अनंत गुणाहीन बंधेगी, क्योंकि तीर्यंच गति का उत्कृष्ट हो रहा है ना, उसके साथ वो अनंत गुणाहीन बंधेगी। अभी हमने देखा था जो प्रशस्त अप्रशस्त बनती है वो तो अनंत गुणाहीन बनती है ना। वो तो बता चुके हैं, सामान्य नारकियों की सामान्य ने वो अप्रशस्त है तो अप्रशस्त प्रकृतियां उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी बनेगी, और शेष प्रकृतियां ने जो प्रशस्त प्रकृतियां बनती है वो अनंत गुणाहीन बनेगी। पच्चीस पे कपोतलेशा में तीर्थंकर प्रकृति का भंग मनुष्य गति के समान है। मनुष्य गति के समान है ने मनुष्य गति बांधने वाले के समान है, यानी मनुष्य गति का उत्कृष्ट करने वाला कौन है? सम्यक दृष्टि नारकी, और वो भी सर्वविशुद्ध है, क्योंकि कपोतलेशा में मनुष्य है वो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा, पर सर्वविशुद्ध अवस्था में उसकी लेशा शुभ हो जाएगी। इसलिए अशुभ लेशा के रहते हुए चौथा गुणस्थान में सर्व विशुद्धि बात है। देखो चौथे गुणस्थान की योग्य विशुद्धि सभी चौथे गुणस्थान वालों के होगी, परंतु चौथे गुणस्थान में सर्व विशुद्ध वाला तो देव मनुष्य में तो शुक्ल लेशा वाला हो जाएगा। यहाँ कपोत लेशा में सर्व विशुद्धि नारकी की होगी सम्य दृष्टि के, यानी उसके साथ मनुष्य गति का ही बंध होगा वगैरह वगैरह। मनुष्य गति यानी वो मनुष्य गति पंचक का जो हमने देखा था वैसा। अब आते हैं 26 पेज पर पीत लेशा वालों की बात है। अब पीत लेशा में कहने से पहले से सातवें गुणस्थान तक है। पीत लेशा में अप्रशस्त कर्मों का उत्कृष्ट बंध तो देवी देव करेंगे और प्रशस्त प्रकृतियों का बंध तो मनुष्य करेंगे, अप्रमत्त गुणस्थान वाले सर्व विशुद्ध। तो सात कर्मों का भंग तो ओग के समान है और तीर्यंच गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाले जीव के। पीतलेशा में मनुष्य तीर्यंच तो देव गति ही बांधते हैं, तो तीर्यंच गति और मनुष्य गति बांधने वाले तो देव ही हो गए। तो पीतलेशा में तीर्यंच गति का उत्कृष्ट है, यानी वो तो पीतलेशा वाले देव एकेंद्रीय जाति के साथ उत्कृष्ट करेंगे। तो कहते वो तीर्यंच गति के उत्कृष्ट अनुभाग का बंध करने वाले जीव के एकेंद्रीय जाति हुंड संस्थान सौधर्म कल्प संबंधी प्रथम दंडक और मनुष्य गति पंचक का भंग ओघ के समान है। देखो देखो निकालो। ये पेज नंबर 14 पर लेना है। भुवनवासी वगैरह ना सौधर्म तक का, यहाँ तो तीरंज गति का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, एक केंद्रीय जाति वो पूरा दंड कौन सा है, हुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष तीरंज गत्यानुपूर्वी उपघात स्थावर और अस्थिर आदि पांच वो नियम से बंद करता है उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी, और अनुत्कृष्ट में छह स्थान पतित। यहाँ तीरंज गति एक केंद्रीय जाति हुंड संस्थान आदि चाहिए, कॉमा दिया ना, आदि सौधर्म कल्प संबंधी प्रथम दंडक ये बताया। और मनुष्य गति पंचक यानी मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी औदारिक औदारिक अंगोपांग और वज्र ऋषभ नाराज सहन है, उसका भी उत्कृष्ट बंध कौन करते हैं, हाँ पीतलेशा में समय दृष्टि देव। तो वहां जो बंधने वाली मनुष्य गति का उत्कृष्ट कर रहे तो उसके साथ जो अप्रशस्त बनती है वो अनंत गुणाहीन, और प्रशस्त बनती वो भी अनंत गुणाहीन, नहीं समझे, क्योंकि उसके मनुष्य गति के साथ पंचेंद्रीय जाति बंधेगी, और पीतलेशा में पंचेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट बंध तो अप्रमत्त गुणस्थान वाले करेंगे। देखो पेज नंबर 3 निकालो, ओक के समान बताया ना उन्होंने, नीचे का पैराग्राफ है ना यानी 5 नंबर का, देखो मनुष्य गति का उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव, यह हमारे पीतलेशा में समय दृष्टि देव को लेना है, वहां पंचेंद्रीय जाति तेजस शरीर कारमान शरीर समय चतुर संस्थान प्रशस्त अप्रशस्त सबको लिया, प्रशस्त कर्मों को भी लिया अप्रशस्त, क्योंकि अप्रशस्त का उत्कृष्ट तो मिथ्या दृष्टि करेगा, प्रशस्त का उत्कृष्ट तो अप्रमत्त वाला करेगा पीतलेशा में, वो सारे कैसे बंधेगी, तो अनंत गुणाहीन बंधेगी। केवल इसके साथ बंधने वाली जो मनुष्य गति पंचक वाली जो अन्य चार प्रकृतियां है वो नियम से बंधेगी, वो उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी होगी, इस तरह से उसका अर्थ है। आना यहाँ पर 26 पेज पर, ये 3 लाइन हमने पढ़ी, यानी तीरंज गति के उत्कृष्ट के साथ वो एकेंद्रीय जाति आदि वाला पहला दंडक और मनुष्य गति पंचक वगैरह का ओघ के समान है, वो अभी हमने देख लिया था। देव गति दंडक का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है, ऐसा कहने का कारण यह है देवगति चतुष्क का जो देवगति दंडक या देवगति का उत्कृष्ट बंधक, चतुष्क नहीं लेना, देवगति का उत्कृष्ट बंध करने वाला जीव वो अप्रमत्त गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध जीव है। तो वहां पर उसके लिए तो हाँ यही उत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी होगा, क्योंकि गुणस्थान सातवा है, यहाँ डिफरेंस होगा अनुभाग बंध में। और देवगति के साथ जो अप्रशस्त कर्म बनते हैं कौन से, अप्रशस्त वर्ण चतुष्कर उपघात, वो कैसे बंधेंगे, अनंत गुणाहीन बंधेंगे। ख्याल में आई बात ये, फिर से 24 पेज निकालना। हाँ अभी परिहार विशुद्धि के समान बताए ना उन्होंने, वहां उन्होंने बताया आहार का योग्य के समान रख, निकाल पीछे पीछे जाएंगे जरा, योग मार्गणा में आहार का योगी कल की बात होगी ना, ये कारमान का योग वैक्रिक का योग औदारिक औदारिक मिश्र, आहार का योगी कहाँ लिया, 24 पेज पर, मैं यहाँ 24 पेज पर बताया था उन्होंने, आहार कायोगी जीवों के समान बन, पर आहार कायोगी की बात कहाँ लिखी है? शेष प्रकृतियों का मंगल हर कायोगी के समान है, वो मन परे ज्ञान में भी बताया था उन्होंने। क्योंकि आहार कायोगी केवल छठा गुण स्थान है ना। आहार द्विक की बात नहीं है, आहार काय योगी की बात है। 18 पे मैं पीछे ही देख रही थी। हाँ, आहार काय योगी और आहार मिश्र काय योगी जीवों में 18 पेज पर पहली लाइन है। वहां तो सर्वासिद्धि के समान छह का मोहनीय का अलग से बताया। हास्य का देवगति का नीचे लिखा, पेज नंबर 18 पर वो देवगति का उत्कृष्ट 40 नंबर का जो है, हमने बताया ना देवगति के साथ जो प्रशस्त है वो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी होगी, और अप्रशस्त वर्ण चतुष्कर उपघात है वो अनंत गुणाहीन बन देगी। पेज नंबर 18 पर है वो। बिल्कुल होता है, नवे गुण स्थान में नहीं होता, नवे गुण स्थान में नहीं होता, उपशम श्रेणी में भी, श्रेणी वाले नवे गुण स्थान, नवे से लेकर ऊपर। हाँ, अनुभाग का वेरिएशन नहीं होगा। ये हो गया ना, देवगति दंडक की बात बताई हमने, वो हमने पेज 18 पर देख लिया। क्या देखा? क्योंकि हमारी मार्गणा कौन सी है? पीतलेशा वाली है। वह पीतलेशा में देवगति का उत्कृष्ट कौन करेगा? तो अप्रमत्त गुणस्थान वाला करेगा, और वहां उसके साथ पंचेंद्री जाति आदि बनती है तो उत्कृष्ट भी अनुत्कृष्ट भी बन देगी, और प्रशस्त दो ही बनती है तो अनंत गुणाहीन बन देगी, और तीर्थंकर प्रकृति कदाचित बन देगी, बनती है तो उत्कृष्ट भी बन देगी अनुत्कृष्ट भी बन देंगे इस तरह से। अभी चौथी लाइन पीतलेशा में पेज नंबर 26, असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन के। देखो लक्ष्मी, आप बताना पीतलेशा में असंप्राप्त सृपाटिका सहनन कौन बांध रहा है? मनुष्य तीरिंच तो देवगति बांध रहा है। पीतलेशा में जो है ना, हाँ, वो तो पंचेंद्रिय जाति के साथ बांधेंगे। हाँ, देखो देखो, अभी पढ़ते हैं यहाँ से। असंप्राप्त सृपाटिका सहनन के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाला जीव, पहले में ये कौन है वो नक्की करना है। तो पीतलेशा वाला देव है वो जीव, तीर्यंच गति। अब वो तीर्यंच गति का उत्कृष्ट पीतलेशा वाला जो है एक इंद्रिय जाति के साथ उत्कृष्ट करेगा, और यहाँ वो पंचेंद्रिय जाति के साथ तीर्यंच गति कैसी बंधेगी? यहाँ पर वो हीन होकर बंधे नेचुरली ना, ना। अनंत गुणाहीन अनुभाग बंद है।
अच्छा,
बीच में फुल स्टॉप डाला था, हमने ऊपर भी फुल स्टॉप डाला था। देखो ऊपर क्या, ऊपर पढ़ो प्राकृत में सेकंड लाइन, देवगति दंडवो परिहार भंगो, वो तो हो गया। असंप व उत्कृष्ट बंध तिरिक गति पंचेन्द्रियादि सोधम्म दंडवो, यहाँ फुल स्टॉप है। यानी असंप्राप्त रूपटिका सहनन के उत्कृष्ट अनुभाग को बांधने वाला जीव तिर्यंच गति पंचेन्द्रिय जाति आदि सौधर्म दंडक के समान अनंत गुणाहीन अनुभाग बंध है, ऐसा चाहिए वहां पर। ये हमने डाला था लास्ट टाइम। हाँ लिखा है ना बाजू में। यानी वो वाक्य कैसा है, सौधर्म दंडक के समान अनंत गुणाहीन अनुभाग बंद करता है, और उसके लिए हमने पेज नंबर 14 को भी लिख के रखा था लास्ट टाइम। बहुत मेहनत की हमने। हाँ इस बार 14 में लिखा है ना, देखो असंप्राप्त सुपाटी का सहनन का उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करने वाला जीव, नहीं वहां नीचे लेना है, भवनवासी में लेना है, पीतलेशा है ना, बीच में लिया तो वो तो पद्मलेशा वाले करेंगे उसका उत्कृष्ट, यहाँ भवनवासी में असंप्राप्त है। 31 नंबर का पॉइंट लेना है, वो तीरंज गति पंचेन्द्रिय जाति औदारिक शरीर तेज शरीर वो सब गए, सब कैसा है, अनंत गुणाहीन अनुभाग को बांधता है। मिला आपको? यानी 14 पेज पर 31 नंबर का पॉइंट, पैराग्राफ 31। एक फुल स्टॉप के कारण कितना डिफरेंस हो गया है ना। और अप्रशस्त का भी नया वाक्य है, अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर का असंप्राप्त के साथ चल रही है, नियम से बंद करता है, किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी बंद करता है। क्योंकि मनुष्य तीरियंच तो अप्रशस्त विहाय गति और दुस्वर का बंद ही नहीं करते, कौन, पीतलेशा वाले, क्योंकि वो देवगति बांध रहे। अब इसका कौन करेगा, वो जो पीतलेशा में पंचेन्द्रिय की जाति के साथ तीरंज गति के साथ उसका बंध होगा, तो वो उत्कृष्ट भी और अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का बंध करता है तो वह 6 स्थान पति थाने को लिए हुए होता है। 4 संस्थान और 4 सहनन का भंग सौधर्म कल्प के समान है, क्योंकि बांधने वाले देव ही है, क्योंकि तो मनुष्य तो समझते तो संस्थान बांधेंगे, सहनन नहीं बांधेंगे कीतलेशा में। वो संस्थान सहनन का आपस में लेना है, बाकी प्रकृतियां तो अनंत गुणाहीन बनती है। हाँ इसी प्रकार पद्मलेशा में भी जानना चाहिए, वहां एक इंद्रिय वगैरह नहीं बंधेंगे। इतनी विशेषता है कि अप्रशस्त प्रकृतियों का भंग सहस्रार कल्प के समान है। यानी वो पद्मलेशाओं में जो हमने देखे थे, यानी अभी हमने असंप्राप्त सुपाटी का सहनन की बात देखी थी, वहां तो तीरियं जगती भी उनको उत्कृष्ट बंधेगी उनके लिए, इसलिए सहस्रार के समान बता दिया। शुक्ल लेशा में 7 कर्म मनुष्य गति बंचक और क्षपक प्रकृतियों का भंग ओघ के समान है, क्योंकि मनुष्य गति पंचक बांधने वाले तो देव ही है, सम्यक दृष्टि है, उसका उत्कृष्ट करेंगे, एक का उत्कृष्ट या अन्य 4 का उत्कृष्ट करेंगे। पर शुक्ल लेशा में मनुष्य गति का जो उत्कृष्ट कर रहा है वो पंचेन्द्रिय जाति वगैरह जो वहां प्रशस्त प्रकृतियां बनती है, वो शुक्ल लेशा में तो क्षपक को उत्कृष्ट होगी, वो वहां पर उसको अनंत गुणाहीन बनेगी, बस इतनी बात है। और क्षपक प्रकृतियां वो तो देवगति वगैरह जो जिसका उत्कृष्ट है तो उसको उत्कृष्ट केवल यश कीर्ति वो अनंत गुणाहीन बनती क्योंकि क्षपक प्रकृतियों को लेना वहां पर और बाकी जो अप्रशस्त प्रकृतियां है वो तो मिथ्या दृष्टि देव ही उसको उत्कृष्ट बांधेगा। कुंडक संस्थान आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का भंग नव ग्रेवेक की समान है क्योंकि वहां तक बनती है ना ये वो मिथ्या दृष्टि उसको बांधते हैं तो उसके साथ मनुष्य गति ही बंधेगी क्योंकि वहां तो मनुष्य गति का ही बंध है। इस तरह से हमको देखना है। ये हमने देखा था ना पेज नंबर 2 और 3 पर देखा था क्या कहाँ देखा था मनुष्य गति का उत्कृष्ट तो हमने 3 पेज पर देखा था। सहस्र हाँ नव ग्रह के समय देवों के समान बताया था पेज नंबर 15 पर देखा था। तो दूसरी पृथ्वी के समान बताया था नारकी में बताएं 7-8 पेज से। हाँ ठीक है हो गया समय हो गया। ये पीत लेशा की बात ये नहीं सभी हो गए ना पीत पद्म शुक्ल सभी हो गए लेशा मार्गणा हो गए अभी अभव्यों की बात कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।